શ્લોક ઉપર પૂર્ણ પરિમાણ પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 12
નમો લોય સૌ હરિહંતાણમ નમો લોય સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોય સૌ આયુર્યાણમ નમો લોય સૌ ઉજ્જાયાણમ નમો લોય સૌ ત્રિકાળવર્તી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમ ઔષધમ શ્રી ઓમકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમૌ મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમૌ સુમંગળમ નમઃ સમજસ્વારાય
નિયમ સાર ચલતે જીવ અધિકાર ઉસકી છઠ્ઠી કથા કા ભાવાર્થ ચલતે દેખો ક્યા ચલતે હૈ અરિહંત પરમેશ્વર જો તીર્થંકર દેવ હૈ વો અઢાર દોષ રહિત હૈ અઢાર દોષ રહિત અરિહંત પરમાત્મા ઉસકી શ્રદ્ધા સમ્યક દ્રષ્ટિ કો અપના સ્વરૂપ કી શ્રદ્ધા જ્ઞાન કી ભૂમિકા મે એસા અઢાર દોષ રહિત ભગવાન કી શ્રદ્ધા કા શુભ રાગ શુભ ઉપયોગ આતા હૈ ઉસકો વ્યવહાર સંકેત કહેતે હૈ સમજ મે આયા અરિહંત કી બાત ચલતી કે આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાનાનંદ અનંત ગુણ કા પિંડ પ્રભુ ઉસકી અંતર મે સ્વભાવ કી શુદ્ધ શ્રદ્ધા ઓર સ્વભાવ કા શુદ્ધ જ્ઞાન હોતા હૈ વહી સંવર નિદ્રાને મોક્ષ કા માર્ગ હૈ સાથ મે સમ્યક દ્રષ્ટિ કો એસા અરિહંત દેવ અઢાર દોષ રહિત હૈ ઉસકા દેવ કી ભી શ્રદ્ધા ભક્તિ ઉલ્લાસ મે ભાવ શુભ આયા બિના રહેતે નહી ઉસકો વ્યવહાર સંકેત કહેતે હૈ વ્યવહાર સંકેત હૈ નહીં પણ વ્યવહાર કહેતે હૈ સંકેત તો આત્મા કી શુદ્ધ શ્રદ્ધા જ્ઞાનાનંદ કી ઉસકા નામ હી સમ્યક દર્શન હૈ કહેતે અઢાર દોષ મે અજ્ઞાત પહેલે દોષ લખા દેખો વિતરાગ સર્વજ્ઞ કો પહેલે સે લેતે હે ઉપર વિતરાગ પરમેશ્વર જૈન અરિહંત પરમેશ્વર જો અનંત હો ગયા ઓ સિદ્ધ હો ગયા વર્તમાન મે બિરાજમાન મહાવીર ક્ષેત્ર મે હૈ એ દ્રવ્ય ભાવ ઘાતી કર્મ કા અભાવ હોને સે ભગવાન કો જડ ઘાતી કર્મ કા અભાવ હૈ ઓર ઘાતી કર્મ કા રસ રૂપી વિકાર ઉસકા ભી અભાવ હૈ ઉને ભય નહીં હૈ ભગવાન અરિહંત કો ભય નહીં હૈ રોષ નહીં હૈ રાગ મોહ શુભા શુભ ચિંતા નહીં હૈ ખીદ નહીં મુદ નહીં રતિ નહીં વિસ્મય નહીં નિદ્રા નહીં ઉદ્વેગ કહાં સે હોગા ક્યોંકિ જિસકો ઘાતી કર્મ કા નાશ હુઆ ઓર ઉસકા ભાવ રસ કા ભી નાશ હુઆ એસા પરમાત્મા કો અગિયાર દોષ હોતા નહીં હવે ક્ષુધા નહીં હોતી ભગવાન કો વો કહેતે દેખો ઉનકો સમુદ્ર જીતને શાતાવિધિ કર્મોદય કે મધ્ય બિંદુ જીતના શાતાવિધિ કર્મો કા વર્તતા હૈ મોહની કર્મ કે બિલકુલ અભાવ મે લેશ માત્ર ભી ક્ષુધા યા તૃષા કા નિમિત્ત કહાં સે હોગા યે હમારે પંડિતજી ખુલાસા કિયા હૈ સમજ મે આયા નહીં ભગવાન કો ક્ષુધા તૃષા હોતી નહીં માનતે હૈ ને એક સંપ્રદાય હૈ ક્ષુધા તૃષા હૈ ભગવાન કો તો હોતા નહીં ક્યોંકિ ચાહે જીતના શાતાવિધિ કર્મ હો તથાપિ મોહની કર્મ કે અભાવ મે દુઃખ કી વૃત્તિ નહીં હો સકતી તો ફિર યહાં તો જહાં અનંત ગુણે શાતાવિધિ કર્મ કે મધ્ય અલ્પ માત્ર નહીં જૈસા અશાતાવિધિ કર્મ કરતા હૈ વહાં ક્ષુધા તૃષા વૃત્તિ કહાં સે હોગી ભગવાન કો ક્ષુધા તૃષા કી વૃત્તિ લાગણી હૈ નહીં પરમાનંદ કા અનુભવ હૈ પરમેશ્વર કો જિસકા શુદ્ધ ઉપયોગ કા ફળ પ્રાપ્ત હુઆ હૈ સમજ મે આયા આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદ પ્રભુ ઉસકા અંતર શુદ્ધ આચરણ રૂપ ઉપયોગ પુણ્ય પાપ કા શુદ્ધ ઉપયોગ સે રહિત अपना आनंद का सदुपयोग का आचरण का फल पे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। दर्शन जी समझ में आते हैं, उसको ऐसा क्षुधा तृषा होता नहीं, ऐसी परमात्मा पदवी के योग्य भगवान को क्षुधा तृषा मानना ये अरिहंत की बड़ी भूल मानते हरिहंत में, अरिहंत को ऐसा होता नहीं। समझ में आया, क्षुधा तृषा के सद्भाव में अनंत सुख अनंत वीर आदि कहां से संभव होंगे। इस प्रकार वितराग सर्वज्ञ को क्षुधा तृषा न होने से कवलाहार भी नहीं होता। कवलाहार खाना दूसरा खाते ऐसा भगवान खाते नहीं। समझ में आया, कवर खाते पीते कौन सुखी, तो हुई तो हम वार वाली नहीं, दुनिया खावा पीवानी तो सवार मानो वाली बात, इच्छा और तो दुख है, खावा पीवानी इच्छा और तो राग है, राग है तो दुख है, खावा पीवा क्या दूर में सुख है। समझ में आया, जिसको अनंत आनंद प्रकट हुआ परमात्मा को उसको क्षुधा तृषा है नहीं, कवलाहार उसको है नहीं, कवलाहार के बिना उनके अन्य मनुष्यों के असंभवित दूसरा को न मिले ऐसा सुगंधित सुरस युक्त सप्त धातु रहित परमोदारी शरीर रूप नोवाहार कर्म के योग्य सूक्ष्म पुद्गल प्रतिक्षण आते हैं और इसमें शरीर स्थिति टपती है, शरीर स्थिति कायम टपती है, ऐसा पूर्व का पुण्य के कारण ऐसा कर्म का राज बनाते शरीर, ऐसा ऐसा शरीर उसको वृद्धावस्था नहीं होती, शरीर जीर्णता नहीं होती, उसका रोग नहीं होता, ऐसा परमात्मा का शरीर है, ऐसा दोष रहित परमात्मा को मानना चाहिए। और ये दो बोल कहा, पहले तैयार कहा था, ये दो कहा तीर अरे तीन, पवित्रता का यानी पुण्य का ऐसा संबंध होता है घाती कर्मों का अभाव को और शेष रहे अघाती कर्मों का ऐसा सहज संबंध के वितराग सर्वज्ञ को शेष रहे अघाती कर्मों के फलरूप परम उदारी शरीर में जरा ने रोग अने खेद स्वेद परसे इतने नहीं होता। ग्यार ऊपर कहा, बे बीचमा कहा, तीन त्रणा भगवान को शरीर में जरा नहीं होती, उसका सेवक इंद्र हो उसको जरा नहीं होती है, तो भगवान पूज्य है उसको जरा कैसे होती है, शरीर में जीर्ण हो के रोग हो। समझ में आया, भगवान को रोग होता नहीं। और स्वेद स्वेद के पसीना, पसीना भी भगवान को होता नहीं, सोल्फ या बैरिया केवल ही भगवान को भगवंतर में उत्पत्ति के निमित्त शुभाशुभ भाव न होने से देखो, शुभाशुभ भाव जन्म उत्पत्ति का स्थान है। क्या किया, चौरासी का अवतार में उत्पत्ति का हेतु शुभाशुभ भाव है, उसको जन्म कहते हैं, शुभाशुभ भाव से जन्म होता है, तो शुभाशुभ भाव भगवान को है ही नहीं। समझ में आया, उन्हें जन्म नहीं होता, खूब क्या किया, समझ में आया, शुभ ने अशुभ दोनों भाव जन्म का कारण है, शुद्ध उपयोग ही जन्म का नाश का कारण है। अपना आत्मा शुद्ध चिदानंद ज्ञानानंद भगवान जैसा सर्वज्ञ परमेश्वर देखा है, ऐसा परमानंद मूर्ति उसका अंतर्मुख का स्वरूप श्रद्धा ज्ञान आचरण का शुद्ध आचरण और शुद्ध उपयोग संसार का नाश करने वाला है। और शुभ ने अशुभ भाव, पुण्य ने पाप, दो ही भाव जन्म की उत्पत्ति का कारण है। समझ में आया, शुभाशुभ भाव न होने से भगवान को जन्म नहीं आ रहे, तो मोक्ष हो जाए। और जिस दिव्य युग के पश्चात भवांतर प्राप्ति रूप जन्म नहीं, उसको दिव्य युग का मरण भी नहीं होता, दो हो गए, आधार दोष नहीं। इस प्रकार वितराग सर्व आधार दोष रहते, अन्य शास्त्र में भी कहा है, देखो, सो धम्मो जथ दया सोवी तवो विषय निग्रहो जथ दसठ दोष रहियो सो देवो नथी संदेहो। धर्मी जीव अपना निज स्वरूप की दृष्टि की भूमिका में ऐसा परमात्मा को देव तरीके श्रद्धते हैं, दूसरा देव को ही मानते नहीं। समझ में आया? ऐसा सर्वज्ञ परमेश्वर देव शिवाय वो देव नहीं, माने नहीं, कोई ने पजे लागते नहीं। वो कहते हैं देखो, वह धर्म है जहां दया है। दया का अर्थ सूक्ष्म बात है, अपना आत्मा में राग की उत्पत्ति का न होना, शुभ ने अशुभ राग की उत्पत्ति का न होना, क्योंकि शुभ ने अशुभ राग ही हिंसा है। कहा था ना शुभाशुभ से जन्म है, जन्म के आत्मा अहिंसा से जन्म होता है। समझ में आया? आत्मा में जितना शुभ ने अशुभ, इतनी हिंसा आत्मा का स्वभाव की होती है, उसका बंद होने से उसको जन्म धारण करना पड़ते हैं। तो दया भगवान आत्मा एकीला चैतन्य आनंद का पूरा आत्मा है। पूर समझते हैं, वो पानी जल का पूरा आता है नहीं, नदी में बाढ़ पूर कहते नहीं, बाढ़ तो बड़ी वृद्धि अपना प्रवाह नहीं चलते, बड़ा प्रवाह है नदी में, प्रवाह चलते हैं पूर प्रवाह भी नहीं भाषा पानी का पूर चलते हैं बड़ा पूर का क्या अर्थ है हिंदी में है? नदी पूर, तो नदी का पूर आते हैं, ऐसे आत्मा में ज्ञान में आनंद का पूर पड़ा है। खबर नहीं कभी क्या चीज है भगवान आत्मा, ये पुण्य पाप का राग रहित शरीर कर्मा तो जड़ माटी दूर है। आगे आत्मा क्या है, और अंदर में शुभ शुभ भाव होता है तो विकार है, विकार के पीछे अंतरात्मा स्वभाव में चैतन्य आनंद का पूर्ण स्वभाव पड़ा है। उसका अंतर में उपयोगी काकार करके वितरागता का प्रकट होना, उसका नाम दया अहिंसा कहने में आती। समझ में आया देवचंद जी? उसको दया कहते हैं, पर की दया में तो शुभ भाव है, तो भी शुभ भाव से कहीं पर दया खोल नहीं सकती, तो उसका आयुष हो तो जीवे, आयुष न हो तो मर जाए, ऐसा है कि नहीं? डॉक्टर बचा सकते हैं कि नहीं? नहीं बता नहीं सकते,
जो नहीं मरते
तो नहीं मरते, नहीं मरने वाला था उसके काम से डॉक्टर क्या किया आया। भगवान परमेश्वर त्रिलोकनाथ फरमाते हैं कि कोई पर्प की आयुष की स्थिति हुई बिना वो बचे नहीं, और आयुष स्थिति न हो तो मरे बिना रहे, दूसरा उसको मार सके बचा सके ऐसी ताकत एक उसका नाम दया नहीं। पर को बचाने का भाव आता है तो शुभ भाव है, पुण्य भाव है, मारने का भाव ही पाप है। अपना स्वभाव की दया करना, अपना चैतन्य की अहिंसा न होना, हिंसा न होना, विकार की उत्पत्ति न हो, और विकार रहित अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव उसकी अंतर में दृष्टि करके निर्विकार स्वभाव की उत्पत्ति का होना, उसकी उसका नाम भगवान अहिंसा रूपी परमार्थ दया कहते हैं। ये दया वो धर्म है। ओ वसंतलाल जी है, उनको कैसा आखिरी पक्षी, वो पुरुषा सिद्धि में लिखा है अमृत चंद्राचार्य महाराज पुरुषा सिद्धि में, कि जितना उसमें राग है इतना उसमें हिंसा है, इतना उसमें बंद है एक ठिकाने किया, दूसरे ठिकाने राग की उत्पत्ति का नाम हिंसा है। अमृत चंद्राचार्य महाराज कुंदाचार्य महाराज हुआ उसका नौ पीछे 1100 वर्ष पीछे हुआ, दिगंबर मुनि कुंकुंदाचार 2000 वर्ष पहले हुए, और अमृतचंद्राचार्य भी 900 वर्ष पहले हुए। दिगंबर मुनि संत जंगल में बसने वाले, वो कहते हैं जितना उसमें राग, क्योंकि आत्मा ज्ञानानंद अविकारी स्वरूप स्वभाव का पिंड है, उसमें जितना उसमें राग का उत्पन्न होना, इतना अपनी शांति का घात होता है। समझ में आया? जितना उसमें आत्मा की शांति और कषाय की उत्पत्ति होना स्वभाव के आश्रय से अंतर्मुख में आत्मा परमानंद का सागर पर आए, उसका अवलंबन करके अंतरना अंतर सन्मुख घोलन करके जितनी शक्ति में से व्यक्तता अकषाय भाव की प्रकट हो ओई दया ओई परम धर्म। समझ में आया? यह धर्म के जहां दया है वह तप के जहां विषयों का निग्रह है, क्या कहते हैं उसको? तप कहते हैं कि जहां पांच इंद्रिय का विषय तरफ से हट गया है, पांच इंद्रिय शब्द रूप पर हट गया है और अंतर आनंद में मशगूल हुआ है, उसका नाम तप कहने में आता है। अरे भाई क्या भाई, वह तप है जहां विषयों का निग्रह, शुभ अशुभ विषय बाह्य का है ना, लक्ष्य बाह्य शुभ हो के अशुभ हो वो तरफ से निग्रह को कर या निग्रह हुआ अंतर में पकड़ हुआ शांति का, अंतर शुद्ध स्वभाव की एकाग्रता हुई तो पांच इंद्रिय का शुभ अशुभ का निग्रह हुआ, ऐसी आत्मा दशा को तप कहते हैं, उसका नाम ही मोक्षना मार्ग कहते हैं। भाई जी है ठीक की नहीं, एक प्रकार ठीक से ना हमें थी मान लू का बार प्रकार पत्नी क्या यू रखे तो मेरा विकल्प नहीं बात है, बार प्रकार तो पाए होते समझ आए तो आत्मा अखंडानंद प्रभु शुद्ध स्वभाव नो भंडार ओ तरफ में विषय उसको करके पर विषय से हटकर अपना विषय को दे करके लीन होना, उसका नाम भगवान विषय निग्रह तप कहते हैं। कोमर चंद्र अपना तप यही जाना न्याल भाई किन गया वह देव, देव इसको कहते हैं अडार दोष रहित है, अडार दोष कान मत है, अडार दोष रहित उसको देव कहते हैं, अडार दोष में से एक भी दोष हो ये देव कहने में आता नहीं। सम्यक दृष्टि जीव अपना दिव्य शरीर आत्मा भगवान उसकी प्रतीति श्रद्धा में अडार दोष रहित देव को ही व्यवहार से देव तरीके स्वीकारते हैं, नीचे ही से देव अपना बराबर। समझ में आया? ये देव नो देव से पोती भगवान एक समय में आत्मा दिव्य शक्ति ऐसा अनंत गुण का पिंड भ्रमंडा उसका अनुभव करना वो ही आत्मा देव अपना है, ऐसा देव की दृष्टि की भूमिका में शुभ राग आता है तो इस शुभ राग में अठार दोष रहित परमात्मा को ही समिति स्वीकारते हैं, ईश्वर दूसरा दोष देव वाला को दोष देव स्वीकारते हैं नहीं। समझ में आया? तीन बोलिया ये समझ में संशय नहीं, एमा संदेह नहीं कि बड़ी दूध केवा अजय भगवान को क्षुदा होगी कि नहीं, तर्षा होगी कि नहीं, रोग होता है कि नहीं, संदेह नहीं है दिया नहीं ऐसे के नहीं एम नहीं होयज नहीं। त्रण लोकना नाथ सर्वज्ञ परमेश्वर सौ इंद्र थी पूजनीय परमात्मा साक्षात महावीर क्षेत्र में अरिहंत पने सिमंदरपुर विराजते हैं, महावीर आदि भगवान पहले हो गया वो तो सिद्ध हो गया, अरिहंत को भी वो क्षुधा तृष्णा रोग आदि का दुख उन्हें दोष होता नहीं, उसमें संशय नहीं, निसंदेह ऐसा है हम कहते भगवान आत्मा का दया स्वरूप की एक धर्म है और विषय निग्रह करके पांच पर तरफ से अंतर में स्वरूप की तरफ में तीर्था करना वो तप है। अर्धार्ध श्रही थे देव है, वो समझ में आया। ये धर्म तप ने देव त्रण आया, त्रण नहीं है क्या बहुत की। अरे श्लोक और विद्यानंदी स्वामी ने श्लोक द्वारा कहा है, एक है ना श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक बोलो। विद्यानंदी दिगंबर संत हुआ है, ब्राह्मण था, पीछे मुनि हुआ, बहुत अंतर में पुरुषार्थी जागृति करके पीछे उसने ये श्लोक बनाया है, तो श्लोक वार्तिक बनाया है, श्लोक वार्तिक पुस्तक बनाया है, तत्व सूत्र की बड़ी टीका उसने आज श्लोक बनाया है। इष्ट फल की सिद्धि का उपाय सुबोध है। क्या कहते हैं? इष्ट मुक्ति को कहते हैं, पहले यहां से लेना है भाई। आ जगत में इष्ट की मुक्ति है ना, पहले मुक्ति की प्राप्ति का उपाय समझना था ना, अर्थ इष्ट फल, इष्ट ना फल नहीं सिद्धि, समझाए से ईष्ट नो फल, सदुपयोग नो फल, मुक्ति ये इष्ट है, दूसरा इष्ट कोई है नहीं। इष्ट फल नी सिद्धि का उपाय सुबोध है, मुक्ति ना फल नी प्राप्ति नो उपाय सन्न ज्ञान। देखो खूबी, भगवान आत्मा पूर्ण आनंद नी उप महानंद का लाभ किया था ना पहले, उसमें ही कहा था मोक्ष का लाभ नहीं कहा था, महानंद का लाभ और मोक्ष वो कहा था, समझ में आया। ये देखो महानंद का लाभ और मोक्ष ये चौथी गाथा में कहा था, समस्त कर्मों के नाश द्वारा साक्षात पाप किया जाने वाला महानंद का लाभ और मोक्ष व्याख्या जुड़ी, परम महानंद तिंद्रिय का लाभ उसकी नाम मोक्ष। मोक्ष को दूसरी चीज, आत्मा में जो परम आनंद पड़ा है शरीर वाणी मन पैसा धूल में क्या ही नहीं आनंद, पुण्य पाप का भाव में आनंद नहीं, आनंद आत्मा में पड़ा है, महा आनंद, महानाम अतिंद्रिय आनंद, पूर्ण आनंद, उसका शक्ति में जो आनंद पड़ा है वो अपनी दशा में प्राप्त होना महा आनंद, उसकी नाम मुक्ति, उसका नाम मोक्ष। बराबर है भैया, लाभ हवाया तुम्हारे वाणी अलग कैसे ने, पैसा ना पैसा लगते हवा वर्ष बह लाभ हवाया, धूड़ नहीं नदी लाभ हवे, पांच लाख मले तो धूड़ न, दो लाख मले तो पुण्य पूर्व ना बढ़ी जाए मले, पूर्व का पुण्य जल जाते हैं तो मिलते हैं, और उसके पास तो मिलते नहीं, वो आते हैं मानते हैं हमारे मिला हो तो राग ममता मिले उसके पास तो है गमे एम हो पैसा आता चमक आई जाए पर एना छोकरा ने कहते ने एम हो छोकरा बोले अमारी अमरा आवा वो आवा तो एना पोर चढ़ी जो तो आने तो दीको हो गए धूल में नहीं आंबल ने भाई पैसा ना चमक फुमक है मूंड अज्ञानी अपनी निज स्वरूप लक्ष्मी को छूकर पर धूल लक्ष्मी में आनंद ऐसा भ्रमणा से मानते आनंद तो अपना स्वरूप में पड़ा है, जिसको खोलकर एकाग्रता से खोलकर जिसकी वर्तमान दशा में पूर्ण आनंद प्रकट हो उसका नाम भगवान मोक्ष कहते हैं। है ना, मां आनंद का लाभ उसका नाम मोक्ष। ये मोक्ष यहां इष्टफल नि सिद्धि एनो उपाय, इष्टफल सिद्धि मुक्ति, मुक्ति नी प्राप्ति नो उपाय सम्यक नाम। एम केम कहूं मैं, ज्ञान थी किया नहीं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो उसका ज्ञान होना वो मुक्ति का उपाय है। समझाया ज्ञान प्रदान से कथन है, एक लो ज्ञान का सूर्य आत्मा है। समझ में आया, ज्ञान चैतन्य सूर्य भगवान ऐसा चम्यक चैतन्य स्वरूप, चैतन्य चमत्कार चैतन्य स्वरूप, पुण्य पाप का राग से रहित ऐसा चैतन्य का सम्यक ज्ञान, मुक्ति का सम्यक ज्ञान उपाय है। को मुक्ति का उपाय शुभ राग है ना, शुभ राग है ऐसा नहीं कहा यहां। जो तेरा क्या ठीक है सब का रसनलाल जी, क्या क्या देखो विजन सन ब्राह्मण का पीछे जैन परमेश्वर की बात सुनी, सुने ने ऐसे बैठे को ओ देव आ, हे देव हे देव, बात लक्ष्मी पीछे देव का लक्षण बांधा ने आओ कहते हैं इष्ट फल की प्राप्त सिद्धि प्राप्ति एनो उपाय, इष्ट मुक्ति एनो प्राप्ति एनो उपाय सुबोध है। जो वो सुबोध है, सुबोध शब्द पड़ा है ना सम्य ज्ञान, मोक्ष परमानंद अपना स्वभाव, उसकी प्राप्ति उसका कारण सुबोध है, सम्य ज्ञान है। मैं आत्मा आनंद शुद्ध चैतन्य हूं, उसमें एकाग्र हूं तो मेरे मुक्ति प्राप्त होगी, वो मुक्ति का उपाय समझना है, सुबोध है, पहले से उपाय है वो बात। खोलवानी एकाग्र थी खोलना, तेजुर में पड़ी हो खोला से कि नहीं, एक अंदर पड़ी एकाग्रता करे कि खुल जाए शक्ति है। क्या है समझ में आया, भगवान आनंद पिंड चिदानंद उसकी हम सम्मुख करके जितनी एकाग्रता करे इतनी खिल जाए अंदर में से, ऐसी चीज ये पड़ी है। समझ में आया, भगवान आत्मा आनंद कंद है, बाहर से कहां लाना है। वो पीपर का दर्शन दिया था नहीं सुना ने तुमने, वो पीपर नहीं छोटी पीपर होती है ना भैया, वो छोटी पीपर नहीं होती, नीनी पीपर जितनी होती है ना, उसमें 64 पेरी चरपराई पड़ी है ना अंदर, 64 पेरी घूमते हैं ना, रगड़ते हैं ना, रगड़ते हैं रगड़ते रगड़ते 64 पेरी चरपराई आती है, कहां से आई, किसने से आई, बिल्कुल नहीं, जिसने से आवे तो पत्थर कोलसा किस डाले, उसमें है वो बराबर है भैया, समझ में आता है कि नहीं। पीपर इतनी हो, इतनी पीपर काली और छोटी और ऊपर करकड़ी, करकड़ी क्या कहते हैं, सुमाली नहीं, सुमाली नहीं होती वो है, ऐसे होते जिड़न जिड़न ऐसा है, दाने दाने होता है, हाँ वो दाने दाने होते है और काली होती है और छोटी होती है, तो अंदर में 64 पैरी नाम रूपियो, 64 पैसा था ना अभी तक तो 100 पैसा तो भी हुआ ना, 64 पैसा नाम 64 पहर घूटने से 64 पैरी चर पर आई बार आती है, हमारी काठियावाड़ी भाषा में 64 पैरी तिखार, तिखो रस अंदर पड़ा है तो प्रकट होता है, मां से प्रकट होता है, प्राप्त की प्राप्ति है, न हो मैं से आती, घूटने से आने आते हो तो पत्थर ने कौन सा घिस डाले, धूल में निकले तो न्याय क्या है भैया, बराबर है, अब न्याय लॉजिक से बात चलती है। ऐसे आत्मा में जैसे पीपर में 64 पेरी चढ़ कर आई भरी है, भगवान आत्मा उसमें दाना है शरीर प्रमाण बिन अरूपी भगवान उसमें अंदर शक्ति में रूपये रूपये पूरा सोला ना आनंद और ज्ञान पर आए।
बराबर
समझ में आया? वो दाने में जैसे चरपरा है और हरा रंग रंग है ना, बात तो कवा है, रंग कैसे आया? अंदर है, हाँ अंदर है तो आया है, चरपरा अंदर है तो आया है। भगवान आत्मा शरीर कर्म नहीं, पुण्य पाप का राग नहीं, ये शिवाय भगवान स्वरूप उसमें पूर्ण आनंद और पूर्ण ज्ञान की शक्ति पड़ी है। उसका बोध करना उस शुद्ध चैतन्य मूर्ति में हूं मैं, राग नहीं, पुण्य नहीं, शरीर नहीं, वाणी नहीं, कर्म नहीं, ऐसा अपना चैतन्य का सुबोध करना वो सुबोध मुक्ति का उपाय है। समझ में आया? सुबोध में कीमत आती है। क्या ज्ञान में कीमत आई कि आत्मा ज्ञान स्वरूप शुद्ध आनंद है, ऐसी कीमत आई? ज्ञान ज्ञान जानते हैं कोई चीज को ज्ञान कीमत करते हैं कि नहीं? कीमत कौन करे? हीरा की कीमत कौन करे? है हाँ, हीरा इतना है, 5 लाख का है, बड़ी कीमत का है, कीमत कौन जड़ करे? ये तो उसको जाने नहीं। तो ऐसी कीमत करने वाला ज्ञान पर की कीमत करते हैं तो अज्ञान है, तो मूड है। अपनी कीमत करे चैतन्य हीरा, ओ हो, जिसमें शांत शांत पड़े अंतर्मुख का एकाग्र होते हैं तो शक्ति में पड़ी शांति जितनी एकाग्रता करते प्रकट होते हैं, ऐसा पहला ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान बिना मुक्ति का उपाय कभी हाथ लगेगा? समझ में आया? हम बाहर बाहर लक्ष्य करते हैं तो बाहर में क्या आत्मा है? बाहर बाहर में तो शरीर दूर दूर शरीर निपुण प्रभाव है बाहर में तो। ये लक्ष्य करने वाला बाहर की कीमत करते हैं तो लक्ष्य करने वाला नीच की कीमत करे? समझ में आया? मैं ही आत्मा आनंद अतीन्द्रिय ने ज्ञान का पूर्ण हूं, पूरा पूरा हूं, पूरा का अर्थ एक रूप हूं, एक रूप अर्थ अखंड हूं, ऐसा अपना ज्ञान से अपना द्रव्य की कीमत करे, उसका नाम सुबोध कहने में आता है। ये सुबोध मोक्ष का कारण। समझ में आया? क्योंकि ज्ञान में कीमत आए तो आत्मा ही शुद्ध परमानंद है, तो पीछे मुक्ति उससे होती है। का अर्थ क्या? वो अपनी कीमत में बार बार रगड़ करते है एकाकार, उसके पूर्व मुक्ति होती है। समझ में आया? सुबोध में तो बड़ा भरा दिया है, पुण्य पाप का विकल्प की कीमत उठ गई, संग ज्ञान में निमित्त की कीमत उठ गई। क्या किया? शरीर ने वाणी की कीमत उठ गई सुबोध में, कि उससे कोई होता मेरी मुक्ति की नहीं, शुभाशुभ परिणाम से मुक्ति होती कि नहीं, शुभाशुभ परिणाम सम्यक ज्ञान वस्तु में है ही नहीं। तो सम्यक चैतन्य का सुबोध हुआ, वो सुबोध सम्यक ज्ञान मुक्ति का उपाय। प्रवीण नहीं, अब प्रवीण होना चाहिए पहले, हम कहते हैं सुबोध सुशास्त्र से होता है, ऐसा सम्यक ज्ञान में सुशास्त्र निमित्त पड़ता है। सुशास्त्र देखो भाषा, मिथ्या शास्त्र अज्ञानी का नहीं, सुशास्त्र जिसमें सम्यक ज्ञान बताना है, वस्तु जैसी है ऐसी जो वाचक शब्द बतावे बताने वाला शास्त्र उसको सुशास्त्र कहते हैं। भगवान आत्मा सुबोध सम्यक ज्ञान मुक्ति का कारण, ये सुबोध सुशास्त्र होता है। उसका अर्थ कि वो शास्त्र में ऐसा कहा है, कहा हुआ हो कि तेरी चीज पूर्ण शुद्ध है, तेरा तुम ज्ञान करो तो तेरी मेरी शुद्धि की वृद्धि, ऐसा शास्त्र में कहा हो उस शास्त्र को सुशास्त्र कहने में समझ में आया। अर्थात अपना स्वभाव की शुद्धि मुक्ति पुनः उसका उपाय सुबोध, तो सुबोध शास्त्र कहा, इस शास्त्र ऐसा कहा तो शास्त्र ऐसे कहा ने, तो शास्त्र उसको सुशास्त्र, ये शास्त्र उसको आत्मा का परम स्वभाव की कीमत कराने में निमित्त हो, ऐसा शास्त्र को सुशास्त्र कहते हैं। समझ में आया, जो शास्त्र राग ने विकल्प को बताकर आत्मा को लाभ बता रहे वो सुशास्त्र नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया, शास्त्र सर्वज्ञ का मुख से निकला हुआ, उस सर्वज्ञ से मुख से निकला तो शास्त्र ज्ञान स्वरूप की पूर्णता यानी वितरागता प्राप्त किया, तो ज्ञान स्वरूप की पूर्णता का केवल ज्ञान वितराग पूर्णता वो जैसे प्रकट हो जहां से ऐसो बतावे उसका नाम शास्त्र कहते हैं। समझ में आया, एक श्लोक में कितना भर दिया है। चोपड़ा में ऐसा लिखा है, ई चोपड़ा को चोपड़ा कहते हैं, चोपड़ा कहते हैं ना, कि जिसमें उसकी मूड़ी की कीमत बता रहे हैं पूंजी की, और वो पूंजी की कीमत कराकर पूंजी जैसे प्रकट हो ऐसा बताए उसका नाम वो शास्त्र कहने में। बीजी रीति कहिए सारा शास्त्र तात्पर्य में वितराता बता लिया है, तो ये सुशास्त्र यहां ज्ञान कराते हैं सुबह, तो वितरागी ज्ञान है। समझ में आया, सर्वज्ञ का शास्त्र निमित्त से कथन है कि वहीं करते हैं तो उससे हुआ ऐसा कहने में आया है, शास्त्र निमित्त में संबंध जोड़ दिया है। सुशास्त्र से होता, शास्त्र से होता है का अर्थ कि जब उसकी उपादान में वो समझने की लायकात हुई तो शास्त्र कहते हैं ऐसा अपने से शुद्ध उपादान में सम्यक ज्ञान प्रकट किया तो सुशास्त्र से हुआ ऐसा निमित्त से कथन करने में। दुनिया चर्चा करने वाला है ना जबलपुर में, समझ में आया, शास्त्र से जो होता है इकला शब्दों से तो शब्द तो अनुभव सुना है, आए तो सुबोध होने में निमित्त कौन है वो बताते हैं। सुबोध तो हुआ अपने से, शास्त्र ऐसा कहा कि तेरी चीज तेरी पास है उसकी ऊपर नजर तुम कर, ऐसा नजर करने में निमित्त कौन पड़ा के सुशास्त्र। समझ में आया, यहां निमित्त संबंध बताना है ना, जैन दर्शन की अनेकांत शैली की यही पद्धति है। एक बार जो ऐसे कहे कि शास्त्र में बुद्धि फरे तो उसको व्यभिचारी कहना, पद्मनंदी 25 में ऐसा कहा कि अपना बुद्धि अपनी है, अपने को छोड़कर पर शास्त्र में विकल्प जाए तो विकल्प उठते हैं वो राग है। क्या तो परद्रव्य में लक्ष्य करते हैं उसमें विकार हुआ वो अपेक्षा का, यहां तो परद्रव्य शास्त्र है तो परद्रव्य बाण उसमें कहा हुआ भाव जिसको समझ में आया तो उसके कहने में आया कि शास्त्र से उसको हुआ ऐसा व्यवहार से कहते हैं। ऐसे बोलने में कैसे आ रहे, निमित्त में संबंध बताना कि निमित्त तो सुशास्त्र इतना कहना है, संज्ञान उत्पत्ति में निमित्त हो तो सुशासन एक ही होता है, ऐसा बताना है। नियम मिथ्या शास्त्र सर्वज्ञ शिवाय का कल्पित शास्त्रों से सम्य ज्ञान हो कि एमा कभी होता नहीं, क्यों मिथ्या शास्त्र में ज्ञान का स्वरूप चेतन क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसी शास्त्र मिथ्या कहने वाला ही जाना नहीं तो शास्त्र में ऐसी बात आती नहीं। तो सर्वज्ञ परमेश्वर एक समय में तीन काल तीन लोग भगवान ने दिखा, उसके मुख से शास्त्र निकला, वो कहते हैं देखो वो सुबोध सुशास्त्र से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है उसकी बात है नहीं यहां, हम तो अनंत बैर सुना, भगवान की दिवजन भी सुनी अनंत बैर, उत्पन्न न होगा क्या निमित्त किसको कहना। समझ में आया सुबोध भगवान ऐसे कहते हैं, इसका अभिप्राय है कि तुम्हारा चैतन पूर्ण शांति से भरा है, तेरे परसन्मुख देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तेरी शांति मैटे तेरा धर्म मैटे परसन्मुख देखने की जरूरत नहीं, तेरा स्वसन्मुख में देखो, ऐसा भगवान की वाणी आया, क्योंकि सर्वज्ञ ऐसा दिखा है कि स्वसन्मुख होगा तब शांति उसको होगी, समय होगा ऐसा भगवान ने दिखा है, तो वाणी में ऐसा आया, वो वाणी उसको निमित्त कहने में आती। समझ में आया, आया तो निमित्त में सब बताना है ना, सुबोध सुशास्त्र से होता है, अरे सुशास्त्र की उत्पत्ति आप से होती है, परंपरा लेना है ना, ऐसा सुशास्त्र का निमित्त कौन, सर्वज्ञ परमेश्वर आप हितोपदेशक सर्वज्ञ परमेश्वर, उसका ही निमित्त वाणी में है, वाणी तो वाणी की क्रिया है, ये वाणी की क्रिया का करना भगवान है नहीं, जड़ की प्रिया है दिव्य ध्वनि भी। पर यहां तो निमित्त निमित्त का संबंध की संधि जोड़ना है कि इष्ट की प्राप्ति मुक्ति की सुबोध सुबोध में सुशास्त्र का निमित्त, सुशास्त्र में निमित्त अयन सर्वज्ञ परमात्मा, उसका मुख सिवाय ऐसी दिवधनी कभी अज्ञानी को निकलती नहीं। समझ में आया, सुशास्त्र की उत्पत्ति आप्त से होती है, आप्त आप्त इतने हित के हित में मायके मानने लायक उसको आप्त कहते हैं, हित ने मायके मानने लायक इसको आप्त कहते हैं, अपना हित माके परमेश्वर मानने लायक है। समझ में आया, इसलिए उनके प्रसाद से के कारण देखो भाषा, ओहो सर्वज्ञ परमेश्वर जिसका ज्ञान से ऐसा जानने में आया, वो प्राणी उस समय में मुक्ति पाने के लायक है, उस समय में वो सम्यक दर्शन पाने के लायक ऐसा ज्ञान में आया था और वाणी निकली। तो कहते हैं कि भगवान का ही हमारे प्रसाद है, हमारी मुक्ति में भगवान की मेहरबानी है। समझ में आया, हिंदी नहीं हिंदी नहीं समय सार, वो समय सार है ना, पांचवी गाथा जो पांचवी गाथा में क्या कहते हैं, देखो कुनकुन आचार है, कुनकुन आचार कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो उसमें प्रसाद शब्द आया है, पांचवी गाथा है ना, कुनकुंडाचार कह मेरा वैभव से मैं समिस्तार कहूंगा, हमारा आत्मा का वैभव जो ज्ञान दर्शन आनंद की प्राप्ति हुई उससे मैं समिस्तार कहूंगा, ये वैभवनी उत्पत्ति में निमित्त कौन था, ये पांचवीं गाथा में कहा कि विज्ञान ग्रंथ जिसमें आत्मा अंतर्निमग्न है सर्वज्ञ प्रभु सर्वज्ञ परमेश्वर अपना विज्ञान ग्रंथ में अंतर्मग्न था एक और पीछे गंधर्व विज्ञान घन में अंतर्मग्न था पीछे हमारा गुरु परम गुरु पर्यंत ये पर विज्ञान घन आत्मा में अंतर्निमग्न था भाई हम कहीं शुभ राग था ने हम नहीं कहीं अरे भगवान सुन करे भाई विज्ञान घन अपना आत्मा ऐसे आत्मा एक तो एक की व्याख्या इतनी निर्मल विज्ञान घन जी आत्मा एक तो व्याख्या इतनी आत्मा किसको कहते हैं निर्मल विज्ञान घन जैम ठंडी में घी जैम जम जाते हैं घी 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 होता नहीं दौड़ जम जाते हैं जिसमें अंगुली का तो प्रवेश न हो पर लोहा का हथियार तावे था कहते हमारी भाषा क्या कहते तुम्हारे ऐसा खुरपी हमारे तावे था काठियावाड़ी भाषा में कहते लोहा का लंबा होता है ना तो अंगुली तो प्रवेश न करे पर तावे था खुरपी न कर सके ऐसा पोष महीना की ठंडी में भैंस का घी जम जाते हैं ऐसा जम जाए दो हो जाए अंगुली नहीं प्रवेश करे ऐसे भगवान आत्मा ठंडा अकसाय स्वभाव से विज्ञान घन पिंड रूप आत्मा है समझ में आया निर्मल विज्ञान घन जी आत्मा आत्मा की व्याख्या यार आत्मा अर्थात निर्मल विज्ञान घन निवर नकोर जिसमें एक शुभ विकल्प का राग का भी प्रवेश नहीं ऐसा भगवान निर्मल विज्ञान घन आत्मा आ उसमें अंतर निमग्न विपर्या आई वो आत्मा आया क्या क्या समझ में आया तो अध्यात्म की बात है तो वो तो अलौकिक बात है सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ उसका घर की बात है भैया तो कहते हैं प्रभु एक सर्वज्ञ कैसा था और उसकी परंपरा में गंधर्व देव और परंपरा में कुमकुंडाचार्य हमारा गुरु कैसा था उसका ख्याल करते हैं पर का ख्याल न आ सके ऐसा न एम कहते हैं समझ में आया निर्मल विज्ञान घन वस्तु स्वरूप उसमें अंतर्निमग्न अंतर्निमग्न लीन हुआ सर्वज्ञ और परंपराए अपर गुरु परम गुरु सर्वदेव अपर गुरु गणधर थी माडी हमारा गुरु पर्यंत हमारा गुरु कुनकुंडाचार्य कहते हैं ईपन निर्मल विज्ञान घन में अंतर्निमग्न आत्मा में था जरा गुरु ने व्याख्या क्रिया करते थे अच्छे ही पालते थे एम न कहीं भाई अरे भगवान भाई हाँ ये ऐसा था एम ना थी प्रसाद रूप पायेल अं तो मारे प्रसाद में एनी मेहरबानी थी गई थी आत्मा आत्मा उसकी प्रसादी भगवान की देखो सर्वज्ञ भी अने अपना गुरु की बदानी प्रसादी है सर्वज्ञ से वर्तमान सुधी हमारा गुरु जी विज्ञान घन निर्मल आत्मा उसमें लीन था आकाल ने ना गुरु की बात करे थे कुनकुंडाचार्य भगवान पिछले 600 वर्ष हुआ संवत 49 तब तो कहते हैं हमारा गुरु तो ऐसा था सर्वज्ञ ऐसा था ऐसा हमारा गुरु भी ऐसा था थोड़ा फिर है उसको यहां जिन्हें में आया नहीं आए तो दूसरा कहना है ऐसी परमात्मा और अपना गुरु उसकी तो पहचान क्या एम उससे प्रसाद रूपे अपाए उसकी प्रसादी हमको मिली हा 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 मेहरबानी का अर्थ ही अपनता अनुकूलता, ये अपनी पात्रता को पर की प्रसादता कहने में लाया है। ऐसी बात है भैया, आप लात का पिए बात क्योंकि हूँ हमें सर्वज्ञाने हमारा गुरु ने मेहरबानी ने प्रार्थना लायक में आता हमें लायक था एम न कहता प्रसाद ही आप लात खाई बात करी है। संतो निर्माण पने कैसी कसम पद्धति लेते हैं ऐसी वस्तु। हमें ये समझ में हमारी पात्रता ऐसी थी कि ऐसी वाणी भगवान का मुख में से हमारा गुरु में से आई क्या कि शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश हमारा गुरु ही हमने शुद्धात्म तत्व ने कृपा करी ने उपदेश दिया कि बाहर का ज्ञान नहीं दिया तुमको। सब ने आशब्द दिया हमको तो बस भगवान आत्मा हमारा गुरु ही हमको ऐसा सुनाया सर्वज्ञ परमेश्वर से परंपरा धारावाही चाली तो कोई सब ऐसा एक शब्द हमको दिया। समझ में आया आते कहीं टीका कैसे हमारा एम भरा है हमारे ने हमारे गुजराती तो भाई कर दिया है हिम्मत भाई सहला सहला श्रद्धा को समझ में आया। कुंकुन आचार्य देव छठे सातवें गुणस्थान जुलते थे तो कहते हैं शास्त्र लखते समय ओहो कहां की आस्था उपारी है सर्वहृदय से कि हमारा गुरु पर्यंत ये सब निर्मल विज्ञान घन भगवान एक आत्मा बताया और उसकी परिणाम में लीन था वो उसका नाम हमारा परमेश्वर ने हमारा गुरु और एक गुरु जी ने हमारा भगवान ने क्या किया हमारी ऊपर कृपा करके इर्थान तो हमारी पात्रता ऐसी थी कोई उपदेश ने लायक हम था।
बराबर
समझ में आया ऐसा उपदेश तो अनंत बार सुना था साधारण नीति नहीं 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 समझ में आया सर्वज्ञ भगवान के मुख से दीर्घनि में अनंत बार सुना था नहीं नहीं ये नहीं ये हमें यह अंतर शुद्ध स्वभाव आत्मा का समझने के लायक की योग्यता थी वही समय में भगवान गुरु ये अने सर्वज्ञ से आया शुद्धात्म तत्व का प्रसाद से अनुग्रह पूर्वक उपदेश एना की जिसका जन्म है हमारा आत्मा की शांति ज्ञान श्रद्धा धर्म उससे उत्पन्न हुआ है। देखो उसे उत्पन्न निमित्त का हमारा अंतर्नी उत्पत्ति में वो निमित्त था दूसरा कोई निमित्त समझ में आया समय सार इतने चौदह पूर्व का सार भरत क्षेत्र का भगवान वाचक पने भगवान वाचपुरा ऐसी समय सार की शैली और कुंड कुंडाचार सर्वज्ञ पासे गए थे तो ठीक पर जिससे लाया कितना परिणमा कितना दौड़ छूटो के हमारा भगवान ने तो इतना कहा था उनको ओहो क्या बड़ा नव तत्व ने जीव जीव ने ऐसा चौद्र कमी सबका सारा है समझ में आया सच भाई थोड़ी त्यारे मेहरबानी कहानी समझ में आया शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह प्रसाद रूपे मैं प्रसादी रूपे आज हमने शू हमको તત્વાત્મ તત્વના અનુગ્રહ અનુગ્રહ અમને અનુસરીને કૃપાપૂર્વક મહેરબાની કરી દીયા. ભાઈ શુદ્ધાત્મા હે ને, પવિત્ર ભગવાન હે ને, બસ બસ એ સાધ્યા એસા લઈ લ્યા. આ ઉપદેશ આપે છે. હા હમણાં એને શ્રોતાને શ્રોતાનું મુખ્ય તત્વ આ છે. બાકી બધી વાતો ઘણી હોય સમજવાની સ્પષ્ટતા માટે, પણ આ બધું કરવા માટે સમજમાં આવ્યા. આ તો બીજા દેશમાં બેહવું હોય એની વાત છે. જાણે બીજા દેશમાં જ છે, અહીં નહીં. એના પાસેથી અમને ઉત્પન્ન થયેલો છે અમારો બાપા. તમારે ટેન્શન નહીં ચૂકી. હમ પરદેશી પંખી સાધુ, આરે દેશને નાહી રે. હમ પરદેશી પંખી સાધુ, હમ પરદેશી પંખી સાધુ, આરે દેશ કે નાહી રે. આ દેશમાં એને નથી હોય. સમજાય છે કઈ? આ દેશમાં અમે તો સ્વરૂપ દેશમાં છીએ, ત્યાં જઈને પૂરણ કરવા માંગીએ છીએ. સમજાણું કઈ? આ તો ભારે સમય સારા લોકો એ ગંધ્યા. હા એ સુશાસ્ત્રની ઉત્પત્તિ આપ્ત સે હોતી હે, અને ઇસકે પ્રસાદ કે કારણ. તો પ્રસાદ કા કારણની વ્યાખ્યા કેવી કરી? કે મુક્તિ સર્વજ્ઞ દેવ કી કૃપા કા ફળ હોને છે. પાત્ર આટલા જ ઉનકે પ્રસાદ કે કારણ, પણ એનો અર્થ ક્યા? કે મુક્તિ સર્વજ્ઞ દેવ કી કૃપા કૃપા થઈ. હા 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 હા, અપની કૃપા થઈ ને સર્વજ્ઞ કી વાણી નિમિત્ત ઉસકી કૃપા થઈ, એસે કહી દીયા. સમજને આયા? ક્યાંગ્યા ભાઈ દુસરા હુકમચંદી બેઠે. અચ્છા કે એ સર્વજ્ઞ મુક્તિ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ કી પ્રસાદ કી મહેરબાની સે મિલતી. હા હા હા, જ્યાં આપને સર્વજ્ઞ સ્વભાવ કા ઉત્સાહિત વીર્ય દ્વારા નિશ્ચય હુઆ, તો ભગવાન કી કૃપા એમ. ભગવાન કી કૃપા ઉસકા જ્ઞાન મેં તથા કૃપા ભગવાન કે અમારા પડે. સમજ માં આયા? એ અપના આલહાદ કી પ્રસિદ્ધિ કરતે હૈ. સમજે છે? સમજાય છે? આપ્તપુરુષો દ્વારા પૂજના યુગ હૈ, માટે એવા આપ્ત પુરુષો સર્વજ્ઞ દેવ તત્વજ્ઞાનીઓ દ્વારા પૂજના યુગ હૈ. અજ્ઞાનીઓ એની કિંમત નહીં કહી શકે એમ કહેતે. બુદ્ધ જ્ઞાની દ્વારા એ પૂજને યોગ એસા આપ્ત ભગવાન, એ મુક્તિ ફળની કૃપાને આપનારા એ ભગવાન એમ નિમિત્તિ કથન પોતાના ઉપાદનથી જાગ્યો છે ને. અમારી મુક્તિ ના દેનાર એ છે એમ કરીને આરોપી કરીને ભક્તિનો ઉલ્લાસ બધાયો છે. એક શ્લોક એ ક્યો કે કેવો ઉપકાર તો સાધુ પુરુ ભૂલતે નહીં. કયા ઉપકારને સાધુ ભૂલતે નહીં? ઉપકાર પોતાને અપના હુઆ આપને છે. ઉપકાર ક્યા? એ સજ્જન પુરુષો ઉપકારને ભૂલતા નથી, ભગવાનને આદર કરતે.